मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 13 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज भी इनफैक्ट मैं उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा जिसकी चर्चा हम लोग पिछले दो दिनों से कर रहे हैं, और उसका कारण यह है कि एक तो विषय बहुत ही व्यावहारिक है, बहुत ही चैलेंजिंग है, जो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, और दूसरा आप लोगों से मिली प्रतिक्रियाएं भी हैं। लगातार जो मेल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जो स्मार्टफोन के उपयोग के बारे में मैंने बातें की थी उनके बारे में अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फिलहाल मुझे इसी विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, जब मैं स्मार्टफोन के प्रयोग की बात कर रहा हूं तो एक बात आप ध्यान में रखें, मैं उसके सही प्रयोग की बात कर रहा हूं, सही प्रयोग की। आपको ध्यान होगा कि दो दिन पहले जब मैंने इस विषय की शुरुआत की थी तो मैंने एक मां की चर्चा की थी जिनके 4 साल के बच्चे को कैंसर हो गया था। मित्रों, क्या आप विश्वास करेंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी पत्नी फिर वहां गई, बच्चे को देखने गई, तो वो देखकर आश्चर्यचकित थी कि वह मां अभी भी अपना ज्यादातर वक्त स्मार्टफोन के साथ बिताती थी, जबकि डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था कि केवल बच्चा ही नहीं बल्कि आप भी फिलहाल फोन का उपयोग मत कीजिए, कम से कम कीजिए। और देखा यह गया कि उसने बच्चे को अपना आप एक फोन पकड़ा दीजिए, बच्चा खेल रहा है और आप मजे से खुद भी या तो स्मार्टफोन में लगे हुए या अपने काम निपटा रहे हैं। अब यहां सोचने की बात यह है कि इतने बड़े संकट से गुजरने के बावजूद आप देख रहे हैं कि हाथ से स्मार्टफोन नहीं छूट रहा है। ये क्यों नहीं छूट रहा है, ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है, आदत, हैबिट। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी यह जरूरत है या नहीं है। हमें इस बात को देखिए यहां समझना होगा, उपयोग उतना ही कीजिए जहां तक उसकी जरूरत है। कई स्टूडेंट ने पूछा कि सर, स्मार्टफोन पर तो फिर क्या हम लेक्चर नहीं सुन सकते, क्या हम उस पर ऑनलाइन कुछ उसका उपयोग नहीं कर सकते, हमें रेफरेंसेस लेने होते हैं, कुछ पढ़ाई करनी होती है। नॉट एट ऑल, ये आपकी जरूरत है। और आज के समय में इनफैक्ट सच यह है कि हम स्मार्टफोन को किनारे नहीं कर सकते, है ना, हमारे लिए एक बहुत जरूरत बन चुकी है। लेकिन हमें यहां इस अंतर को पहचानना होगा कि कहां हमारी जरूरत की सीमा रेखा या यूं कह लीजिए कि मर्यादा खत्म हो जाती है, और कहां हमारी एक अनावश्यक आदत शुरू हो जाती है कि हम परेशान हैं, खो गया तो परेशान है, थोड़ी देर के लिए इधर उधर रखकर भूल गए तो परेशान है, उसमें बैलेंस खत्म हो गया तो परेशान है, अगर मान लीजिए कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो परेशान है। सोच के देखिए कि क्यों परेशान है, क्या हो रहा है, किससे आपको कोई बहुत बड़ी सूचना मिलनी है कि उससे बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, या अगर वह सूचना नहीं मिली तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सोच के देखिए ना, आज आप सड़कों पर निकल जाइए, किसी भी जगह पर चले जाइए, आप देखिए कि लोग गर्दन झुकाए हुए स्मार्टफोन पर में लगे हुए हैं। आश्चर्य होता है, मैंने यहां तक देखा कि लोग जिनमें यंग जनरेशन ही है स्मार्टफोन देखते देखते सड़क पार कर रहे होते हैं, और उस सड़क को पार कर रहे होते हैं जो मुख्य सड़क है, क्योंकि पहले फुटपाथ पर चल रहे थे, उस समय स्मार्टफोन देखते देखते चल रहे थे, अचानक उन्हें याद आया कि अब सड़क भी पार करनी चाहिए। तो जब सड़क पार करने लगे तो ये तो याद आ गया कि सड़क पार करनी चाहिए, लेकिन ये याद नहीं आ रहा है कि सड़क पार करते समय स्मार्टफोन देखना बंद कर देना चाहिए, आप उसमें जो भी देख रहे हैं ये याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वो एक तरह से बड़ी आपकी नेचुरल हैबिट बन चुकी, जैसे सांस लेना और छोड़ना आपको याद आता है क्या, आप लेते हैं छोड़ते हैं बिना याद के, पलकों का झपकना, पलकों का उठना बिना याद के करते हैं, तो ये हमारी हैबिट पड़ चुकी है। लेकिन ये हमारी नेचुरल हैबिट है, नेचुरल हैबिट तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, लेकिन ये हैबिट्स आपको नहीं लग रहा है कि हमारे एग्जिस्टेंस को कितना बड़ा खतरा दे रहे हैं। दोस्तों, यहां पर मुझे एक फिल्म निर्देशक रहे हैं जापान के अकीरा कुरोसावा, उनकी एक डेफिनेशन याद आ रही है, और इस डेफिनेशन ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसलिए अक्सर मैं जहां भी मौका मिलता है इस उदाहरण को आप सबके सामने रख देता हूं। अक्सर चूंकि मुझे ये बहुत प्रिय है और बहुत ही अद्भुत उदाहरण है, ऐसी परिभाषा मैंने आज तक पढ़ी ही नहीं जिंदगी के बारे में। ये परिभाषा इनफैक्ट सीधे सीधे जिंदगी के बारे में नहीं है, लेकिन जिंदगी को बताती जरूर है। उन्होंने अश्लीलता की परिभाषा दी थी कि अश्लीलता क्या है। देखिए, अश्लीलता के बारे में हम सबके दिमाग में एक धारणा बनी हुई कि क्या अश्लील है, जो समाज के नैतिक प्रतिमानों के विरुद्ध हो वो अश्लील है, जिसे खुले रूप में सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए वो अश्लील है, हम यही मान करके चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, कितना ज्यादा इसके दायरे को उन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, जो उनके साथ यंग जनरेशन काम करती थी, फिल्मों में काम करती थी, उन्होंने कहा कि देखिए, आप मौज कीजिए, खूब मौज कीजिए, जितना हो सके मौज कीजिए, लेकिन याद रखिए कि कोई भी चीज जब अपनी मर्यादा से बाहर हो जाती है तो वो अश्लील हो जाती है। देखिए क्या खूबसूरत बात कह रहे हैं, आप मौज कीजिए, कोई बात नहीं, आप उत्सव मनाइए, जितना मना सकते हैं उमंग के साथ मनाइए, लेकिन एक बात कभी मत भूलिए कि अगर उसने मर्यादा की सीमा को लांघा तो वही अश्लीलता बन जाती है, वही उत्सव हुड़दंग में तब्दील हो जाएगा, वही उत्सव किसी में भी तब्दील हो जाएगा। कितनी खूबसूरत बात कह रहे हैं वो, और ये केवल उत्सव मनाने के बारे में नहीं है, हर चीज के बारे में है। आप स्मार्टफोन का उपयोग कीजिए, खूब उपयोग कीजिए, लेकिन याद रखिए कि जब वो मर्यादा की सीमा से बाहर हो जाएगा तो आपके लिए वो जहर बन जाएगा, और वो मित्रों बन रहा है। हमें इसी बात को समझना होगा। मैं खुद स्मार्टफोन यूज करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं यूज नहीं करता हूं, और चूंकि मैं उसका इतना बड़ा आलोचक हूं तो उसको मैंने हाथ लगाना ही बंद कर दिया। बिल्कुल मैं आलोचक नहीं हूं, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं आलोचक नहीं हूं, मैं समीक्षक हूं, मैं एनालाइज कर रहा हूं, कहां उसकी उपयोगिता है वहां तक वो हमारे लिए वरदान है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कहां वरदान एक प्रकार के अभिशाप में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ तो हमें होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं इसे थोड़ा सा और इनलार्ज करते हुए, जो कि मैंने अभी अकीरा कुरोसावा के डेफिनेशन के बारे में बताई, मैं बताना चाहूंगा कि इसी बहाने, स्मार्टफोन के उपयोग के बहाने, क्यों ना हम सब अपनी अपनी आदतों को भी पहचानने की कोशिश करें। बहुत सी हमारी ऐसी अच्छी आदतें होती हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, लेकिन हमारी ऐसी बहुत सी आदतें होती हैं, शायद ऐसी आदतों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो इनफैक्ट हमें गुलाम बनाती है, जैसे कि स्मार्टफोन ने हमें गुलाम बना लिया है। और ये जो गुलामी है, ये हमारी पहचान में नहीं आती, हमारी पकड़ में नहीं आती, क्योंकि हमें तो लगता है कि यार ये तो बड़ा नेचुरल है। हम दुनिया भर के दूसरी गुलामियों के बारे में बात करते हैं, नौकरी करने वालों से पूछिए तो कहते हैं कि हम सरकार की गुलामी कर रहे हैं, हम अपने मालिक की गुलामी कर रहे हैं, हम फलाने की गुलामी कर रहे हैं। पतियों से पूछिए तो पत्नियों की गुलामी कर रहे हैं, पत्नियों से पूछिए तो पति की गुलामी कर रहे हैं, सब नहीं, उनसे माफी चाहूंगा, लेकिन ज्यादातर शिकायतें ही शिकायतें। नौकर से पूछिए तो कहेंगे हम मालिक की गुलामी कर रहे हैं, सब जैसे कि गुलामी से त्रस्त है, जबकि इनफैक्ट ये गुलामियां नहीं है, ये तो हमारे जिंदगी को जीने का एक जीवन की संरचना है। हमें तो एक सिस्टम में रहना ही पड़ेगा, नौकरी करना है तो भैया मालिक की कुछ ना कुछ बात तो माननी ही पड़ेगी, सरकारी नौकरी करनी है तो सरकार का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, अगर आप घर में हैं तो पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ या और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ये सब गुलामियां नहीं है जिन्हें हम गुलामियां कहते हैं। सच यह है मित्रों कि गुलामियां वह हैं जो हमें जकड़े हुए हैं, वो रियल गुलामियां हैं। गुलामी जो होती है वो मनोविज्ञान के स्तर पर होती है, मानसिकता के स्तर पर होती है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, इसीलिए हम उसे गुलामी मानते भी नहीं हैं, और उसे हम अपनी जरूरत मान लेते हैं, लगता है कि नहीं नहीं इसके बिना तो हम जी ही नहीं पाएंगे, यही हम हैं, यही सब कुछ है। दोस्तों, बात केवल स्मार्टफोन की नहीं है, बात सच पूछिए तो हमारे हर किस्म की आदतों की है, और मैं चाहूंगा कि हम सब एक सतर्क व्यक्ति होने के नाते, एक चेतनशील प्राणी होने के नाते, अपनी उन आदतों को पहचाने जो इनफैक्ट हमारे विस्तार को रोक रहे हैं, हमारी चेतना की उदारता को रोक रहे हैं, सच यह है कि हमें बड़ा बनने से रोक रहे हैं। हम शिकायतें दूसरों के लिए करते रहते हैं, वो ऐसा नहीं करने दे रहा है। अगर वो ऐसा करने देता तो मैं ये कर लेता, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये सुविधा नहीं है। हम भूल जाते हैं कि बड़े बड़े काम सुविधाओं से नहीं होते, बड़े बड़े काम जो होते हैं वो साहस से होते हैं, साहस से। और वो साहस हम क्यों नहीं जुटा पाते? क्योंकि हमने अपने आप को अपनी ही ढेर सारी आदतों का गुलाम बना रखा है। जब गुलाम बना रखा है तो साहस भी नहीं है, क्योंकि साहस तो विस्तार की मांग करता है, साहस तो स्वतंत्रता की मांग करता है। जिसमें साहस नहीं होगे वो कभी स्वतंत्रता हासिल कर ही नहीं पाएगा। और उस स्वतंत्रता को रोकने वाले तत्व कौन से हैं? हमारी अपनी आदतें। तो मित्रों, हमें चाहिए कि हम अपनी उन आदतों को पहचाने और पहचानने के बाद धीरे 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 उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करें, करके देखें। जैसे जैसे आपके एक एक आदतें छूटती चली जाएंगी, आप ये मान करके चलिएगा कि आपके हथकड़ियों की एक एक कड़ियां धीरे धीरे ड्रॉप होती चली जा रही हैं, गायब होती चली जा रही हैं, और एक दिन आपके अंदर जो विराट स्वरूप मौजूद है वो सामने में आ जाएगा। आपको भी दिखाई देगा और दूसरों को भी दिखाई देगा। मानसिक स्तर पर आप हम सब उसे महसूस करेंगे। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।